जैसा कि इशिका ने अभिमन्यु को वादा किया था कि वो उसे अब पूरा वक्त देगी। अगले एक हफ्ते तक इशिका एनी टाइम अभिमन्यु के साथ रहने वाली थी। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे थे। रेस्टोरां में खाना खाने के बाद इशिका की जिद करने पर अभिमन्यु से स्ट्रीट पर मौजूद आइसक्रीम ट्रक से आइसक्रीम खिलाने गया और उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल चुके थे। वहीं इशिका की प्रेग्नेंसी न्यूज़ सुनते ही आयशा के मन में अलग ही प्लान चलने लगे थे। वो अब कैसे करके इशिका के आसपास रहना चाहती थी। अभिमन्यु और इशिका वहां से निकले तो आयशा भी उनके पीछे टैक्सी में जाने को हुई। तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और उसका मुंह बंद कर लिया था। वो रेस्टोरेंट थोड़ा आउटसाइड एरिया में बना हुआ था। रात हो जाने की वजह से वहां ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। इस अंधेरे का फायदा उठाकर उस शख्स ने आयशा को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। आयशा उस शख्स को देखकर हैरान रह गई। उसने जैसे तैसे उसका हाथ अपने मुंह से अलग किया और कहा, पार्थ राजवंश, तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल अच्छे से, आयशा सिंघानिया, और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं मेंटल असाइलम में होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी कि किसी के काम में टांग मत अड़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो टांग काट कर छोड़ दे, पार्थ ने धमकी भरे लहजे में कहा। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। तुम भी अभिमन्यु और इशिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आए हो। मैं नहीं जानती कि तुम उनके सामने अच्छा होने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, लेकिन हम दोनों की मंजिल एक ही है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, आयशा ने जल्दी से कहा। बहुत मुश्किल से उसे अपनी बात रखने का मौका मिला था। आयशा ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि पार्थ ने उसे पकड़कर बुरी तरह मरोड़ दिया था। आयशा दर्द से चिल्ला पड़ी थी, पागल हो क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, आयशा गुस्से में बोली। पार्थ पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो हंस रहा था। अचानक उसने आयशा के गले पर हाथ रखा और उसे हल्का दबाते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि एक पागल की बात पर कोई यकीन करेगा? वो पागल जो नॉर्मल पागल नहीं है, एक क्रिमिनल भी है। तुम अब तक लोगों के दिमाग के साथ खेलती आई है और एक लड़की की झूठी पहचान पर जी रही थी। पागल खाने चली गई थी, इस वजह से बच गई थी तुम आयशा, लेकिन ठीक ठाक हालत में सामने आई ना तो कोई नहीं छोड़ेगा, खासकर इशिका और अभिमन्यु। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अपना प्लान बताने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरा साथ दोगे? आयशा ने अटकते हुए कहा। पार्थ ने उसका गला छोड़ दिया था। वो बोला, चलो मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारा प्लान क्या है। इशिका प्रेग्नेंट है ना, मुझे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुझे बस वो बच्चा दे देना। इशिका सिंघानिया कभी वो लग्जरी और अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती। वो मेरी लाइफ थी, उसकी वजह से मुझे अपने बच्चों को मारना पड़ा। अब मैं उसके बच्चों को एक अच्छी लाइफ बिल्कुल नहीं जीने दूंगी, आयशा ने सख्त आवाज में कहा। पार्थ पहले ही उनके बारे में सब कुछ जानकर आया था। उसे ये पता था कि उस दिन में हॉस्पिटल में क्या हुआ था। आयशा ने खुद ही अपने बच्चे की जान ली थी ताकि माहिर के साथ उसके रिलेशन का किसी को पता ना चले। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, बहुत ही बेकार प्लान है। सालों पहले तुम्हारी माँ ने एक घटिया चाल चली थी, उसे क्या लगा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी? कभी न कभी तो सच सामने आना ही था और आ गया। खैर, मुझे तुम लोगों की फैमिली राइवलरी से कोई मतलब नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। अगर तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी भी ट्रबल हुई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। मुझे उससे बदला लेना है और मैं किसी के कहने से हटने वाली नहीं हूँ, आयशा ने कोल्ड टोन में कहा। पार्थ के धमकाने का उस पर कोई असर नहीं रहा। उसे इस वक्त एक ही बात याद थी कि इशिका की वजह से उसकी हस्ती खेलती जिंदगी बिगड़ गई थी। ठीक है, फिर जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, पार्थ ने सर्द आवाज में कहा। दूसरी तरफ अभिमन्यु और इशिका घर पहुंच चुके थे। वो घर पर आए तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजवंश टेरिटरी में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय गार्ड्स के वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने इशिका को गाड़ी से बाहर निकाला और दोनों साथ में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते अभिमन्यु और इशिका के बीच कोई बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि अभिमन्यु ने थोड़ी देर पहले जो भी कहा था उसके बाद इशिका की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे कुछ कह सके। वहीं कमरे में आते ही अभिमन्यु ने इशिका को खींचकर अपने करीब किया। उसके हाथ इशिका की कमर पर थे। अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात के बाद तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी, ये गलत है। अब क्या मैं अपनी इमोशंस बता भी नहीं सकता? बिल्कुल बता सकते हो, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब सच में लग रहा है मेरे चक्कर में तुम्हें अपनी फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, इशिका ने उसकी तरफ देखकर आवाज में कहा। चलो ठीक है, देर से ही सही, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। वैसे क्या अभी भी मुझे अपनी फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मिसेज राजवंश? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा, तो इशिका ने नामे सिर हिला दिया था। इशिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर बहुत आराम से बेड पर लेटा दिया था। अगले ही पल वो इशिका के ऊपर था और उसे बेहद इंटेंसिटी से किस कर रहा था। इशिका भी सब कुछ भूलकर उसके साथ उस लम्हे में खोई हुई थी। कुछ ही देर में उनके कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे। इशिका और अभिमन्यु अपनी सारी टेंशन भूलकर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। राधिका परेशानी में चहलकदमी कर रही थी। सुबह सुबह उसके पास लॉयर का कॉल आया था, इसके बाद से ही राधिका बेचैन हो गई थी। वो इशिका के उठने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उससे बात कर सके। रात को देर से सोने की वजह से इशिका अभी तक उठी नहीं थी और ना ही अभिमन्यु। राधिका एक बार फिर उनके कमरे के आगे से चक्कर लगाकर गई तो वसुधा ने उसे देख लिया था। उसे इस तरह परेशान देखकर वसुधा ने राधिका के पास आकर पूछा, क्या हुआ राधिका? निवेदिता ने मुझे बताया कि तुम सुबह से काफी बार इशिका के कमरे के आगे आ चुकी हो, कुछ काम है तो उसे जगा देते हैं। हाँ, काम तो था मिसेज राजवंश, पर इस तरह बच्चों को उठाना अच्छा नहीं लगता है। अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं थोड़ा वेट भी कर लेती, राधिका ने धीमी आवाज में कहा। वो काफी रेस्टलेस लग रही थी। वसुधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिविंग एरिया में ले आई। उसने इशारे से निवेदिता को कॉफी लाने को कहा। निवेदिता के वहां से हटते ही वसुधा ने राधिका का हाथ सहलाकर पूछा, तुमने पिछले दिनों काफी कुछ सहन किया है, अब हम तुम्हारा परिवार है और मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती हो। वसुधा के प्यार भरे शब्द सुनकर राधिका को अच्छा महसूस हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, लॉयर का कॉल आया था और उसने बताया कि सिंघानिया मेंशन को केशव सिंघानिया ने खरीद लिया है। वो घर आदर्श के नाम था, विल के हिसाब से उसके बाद आयशा के पास जाना था। इशिका अचानक हमारी जिंदगी में आई थी और फिर अचानक चली भी गई। इन सब के चक्कर में विल बदलने का मौका ही नहीं मिला। आयशा के नहीं होने पर उसके लिए घर खरीदना आसान था। हाँ, तो इसमें तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? केशव सिंघानिया एक अच्छा आदमी है, अगर तुम्हें घर से लगाव है तो हम बात करके उसे वापस हासिल कर लेंगे, वसुधा ने सुझाव दिया। वो नहीं जानती थी कि राधिका और केशव का क्या पास था।
केशव का अचानक वहाँ आना और फिर इस घर को खरीदना आम बात नहीं थी। राधिका जब आखिरी बार उससे मिली थी तो उसे वादा किया था कि वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। पिछली बार केशव ने उसका वादा पूरे दिल से निभाया था, लेकिन इस बार वो उसके पीछे वहाँ आ गया था। ये सब राधिका के दिल में डर पैदा कर रहा था। राधिका खुलकर कुछ भी वसुधा को बात नहीं पा रही थी। उसने बात को टालते हुए कहा, मैं बस इशिका से बात करना चाहती हूँ, उसे इस बारे में पता होना चाहिए। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जब उठ जाएंगे तो हम उन्हें बता देंगे, ये इतनी भी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम खुद को तंग कर रही हो। साथ में कॉफ़ी पीते हैं, उतने में बच्चे भी उठ जाएंगे, वसुधा ने जवाब दिया। तब तक निवेदिता भी कॉफ़ी लेकर आ चुकी थी। राधिका ने बिना मन के कॉफ़ी का मग उठाया। उसने मन ही मन कहा, मुझे इशिका को केशव की सच्चाई बता देनी चाहिए थी, उसे किसी और से पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। केशव अचानक यहाँ इस तरह आया है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। राधिका के पास इशिका के जागने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं रूम के अंदर इशिका की नींद टूट चुकी थी, साथ ही अभिमन्यु की भी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना मिस्टर राजवंश, जहाँ तक मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहते हो, पिछले दिनों काम पर ध्यान नहीं दिया तो अब ज़्यादा काम करना होगा। मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलने को तैयार हूँ, लेकिन बेड से तो नीचे उतरो, इशिका ने उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसे छोड़ने के बजाय और टाइटली पकड़ लिया था। वो बोला, कभी कभी लगता है मुझे नकुल राजवंश की बात मान लेनी चाहिए, इस पोजीशन के साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्यों ना मैं रिज़ाइन कर दूं, फिर हम दोनों आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी पैसों की क्या कमी है, मेरी वाइफ इतनी बड़ी रिसर्चर है जो है। बहुत अच्छा मजाक था अभिमन्यु, चुपचाप खड़े हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, इशिका ने उसे घूरते हुए कहा, तो मजबूरन अभिमन्यु को उसे छोड़ना पड़ा। लगभग एक घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर बाहर निकले। इसी के साथ राधिका की सांस में सांस आई। एक बार तो उसका मन किया कि वो जाकर इशिका को उठा दे, लेकिन इशिका अभिमन्यु के साथ थी, बस यही सोचकर वो रुकी हुई थी। इशिका को देखते ही राधिका जल्दी से उठकर उनसे बात करने के लिए आई। तभी उसने देखा कुछ पुलिस वाले अंदर आ रहे थे। अभिमन्यु इशिका भी उन्हें वहां देखकर हैरान थे। सीनियर इंस्पेक्टर माधव वहां पर आए थे। वो माहिर के केस के चलते अभिमन्यु और इशिका को पहले से ही जानते थे। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेज राजवंश, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या लगता है क्या हुआ होगा? चलिए अगले भाग पर पता चल जाएगा, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले भाग पर मिलते हैं, आज 250 चैप्टर्स पूरे हो गए।